ഓമജ്ഞാനതിമിരന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുഃ ഉന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ വാഞ്ഛാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. സൈ ഹേർഡ് മഹാരാജ് ഈസ് ഓൺ ദ വേ, വിൽ കം ഇൻ 10 മിനിറ്റ്സ് ഓർ സോ. So I'll keep talking few minutes until Maharaj arrives here. I can speak in English or Hindi? Main English mein bolo, Hindi mein bolo? Okay, how many English? Okay, how many Hindi? Hindi mein? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, Hindi mein bolenge. Dekhiye, shastra mein ek shabd hai, ऋषि ऋण नाम का शब्द आपको प्राप्त होगा. ऋषि ऋण का मतलब क्या है? इस दुनिया में हम किसी भी व्यक्ति से कुछ प्राप्त किए हो तो हम उनको ऋणी बन जाते हैं. जैसे बच्चा जो है माता पिता से कुछ प्राप्त करता है तो माता पिता के लिए ऋणी हो जाता है वो. हाँ, इस तरह कोई अध्यापक कुछ सिखाते हैं तो हम अध्यापक को भी हम ऋणी हो जाते हैं. इस तरह हम देवताओं से विविध चीज़ों को प्राप्त करते हैं, जैसे सूर्य की रोशनी, तापमान, जैसे हवा और पीने का पानी इत्यादि, तो हम ऋणी हो जाते हैं. इस तरह हम अनेक जानवरों से भी, जैसे गाय है, घोड़ा है, कुत्ता है, हर एक जानवर का कुछ ना कुछ लाभ है. जैसे गाय दूध देती है, दूध से घी बनती है और यज्ञ होता है, दही और इत्यादि हम खाते हैं, तो गाय के लिए हम ऋणी बन जाते हैं. घोड़े सवारी के लिए, गधा भार उठाने के लिए, इस तरह है, और कुत्ता सुरक्षा प्रदान करने के लिए. तो इस तरह हम अलग अलग प्राणियों को भी हम ऋणी हो जाते हैं. तो ऋषि ऋण का मतलब है खास करके जो परंपरागत आचार्य गण जो हमको परंपरा में आकर अपने जीवन शैली के द्वारा और अपने प्रचार काम के द्वारा, अपने उपदेशों के द्वारा और भगवान के दिए हुए विधि विधानों को अपने जीवन में पालन करके, तीव्रता से पालन, कड़क नियम पालन करके वो लोगों ने भगवत धाम प्राप्त की है. भगवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगता. भगवान बताते हैं कि अर्जुन, अनेक महात्मा लोग इस पथ को पकड़कर भगवत धाम वापस लौट चले हैं. तो वो लोगों ने हमको जो छोड़कर गए हैं, आप पढ़ेंगे भागवत के दशम स्कंद में, महात्मा लोग ये एक नाव में चढ़कर इस संसार को पार करके भगवत धाम चले जाते हैं. लेकिन भगवत धाम जाते समय वो क्या करते हैं, वो नाव को छोड़कर जाते हैं हमको. क्यों? ताकि हम उसी नाव को पकड़कर हम भी संसार सागर को हम पार कर सके. इसलिए तो वो नाव क्या है, वो भक्ति का पथ है. महाराज आगे. हाँ ठीक है. तो इस तरह एक सुंदर श्लोक है, यैरि दृशि भगवतो गतिरात्मवाद एकांततो निगम भी प्रतिपादितानः തുഷ്യന്ത്വദബ്രകരുണാഃ സ്വകൃതേന നിത്യം കോ നാമ തത് പ്രതികരോതി വിനോദപാത്രം. ഈ ശ്ലോക മേ ബതായാ ഗയാ ഹൈ, യൈരീദൃശി ഭഗവതോ ഗതിരാത്മവാദ. യേ ആത്മവിദ്യ ജോ ഹൈ, ഇസ്മേ ദിയെ ഹുയേ വിധിവിധാനം കോ ബഹുത് ഗംഭീരതാ സേ അപ്നേ ജീവൻ മേ ഉതാർകർ एक दृढ़ विश्वास को प्राप्त करके ऋषि मुनि लोग इस दुनिया में प्रचार काम में लगे रहते हैं, और हम उनको कैसे अपने, हम लोगों के धन्यवाद हम प्रकट कर सकते हैं, कैसे अपने ऋण चुका पाएंगे हम लोग उन ऋषियों की ओर, क्योंकि अगर हम ऋण चुकाना चाहेंगे वो किसके बराबर है, वो बताते हैं, वो एक जोकर को क्या बोलते हैं, जोकर विनोद है? विदूषक हम विदूषक बन जाएंगे बोलते हैं, क्योंकि कोई भी गुरु और वैष्णवों से प्राप्त किए हुए कृपा जो है उसके लिए उस ऋण को हम कभी चुका नहीं पाएंगे। हम सिर्फ किसके समान बोलते हैं, गंगा से पानी लेकर गंगा को ही वापस देना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस तरह हम मुनि से ही ज्ञान लेते हैं, उसी ज्ञान का प्रचार करते हैं, उसी ज्ञान को हम जीवन में अपनाते हैं, और हम जो भी करते हैं हम उनसे पाकर उनको ही देते हैं, हमारा कुछ नहीं है, इस तरह की भावना है इस श्लोक में। ये श्लोक बोला गया किसके द्वारा, पृथु महाराज, पृथु महाराज चतुष्कुमारों के पद धूलि को अपने सर के ऊपर धारण करके उनके श्री चरणों को धुलाकर ये श्लोक बोला उन्होंने, तो अपने कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए। आप देखेंगे भगवान के सृष्टि में सब निस्वार्थ हैं, जैसे सूर्य निस्वार्थ होकर रोशनी देता है, ताप देता है, इस तरह चंद्रमा भी निस्वार्थ होकर रोशनी देती है, शीतलता प्रदान करती है, इस तरह हवा भी, इस तरह बादल के पानी भी, इस तरह फूल भी, फल भी, पेड़ की छाया भी, और गाय भी, गाय हो कोई कुछ भी प्राणी क्यों ना हो, आप देखेंगे कोई भी पेड़ भी आम देता है लेकिन कुछ पैसा नहीं मांगता आपसे। कोई किसान आता है बीच में और वो आम को हाथ में लेकर आपसे पैसा मांगता है वो, लेकिन भगवान की निस्वार्थ भावना प्रकृति से प्रकट होता है, प्रकृति को देखकर हम समझ सकते हैं कि भगवान कितने निस्वार्थ हैं। तो अगर भगवान निस्वार्थ हैं, इतना बहुत कुछ हमको करते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हम भी ऋणी बन जाते हैं भगवान को, हमने क्या किया है उनके लिए, ये सोचने की बात है। तो भगवद गीता के एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस भूमि के, धरती के ऊपर धान्य, फल, पानी, दूध, अनेक खाने के पदार्थ उत्पन्न होते हैं, अगर कुछ जीव इन चीजों को खाकर अच्छा मोटा शरीर बना लेता है लेकिन कुछ ऋण को नहीं चुकाता है, ऐसे व्यक्ति को चोर कहा गया है भगवद गीता में। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दान तैर्दान तान अप तैर्दात अर्थ तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्थेन एव सः, ऐसे बता गया है स्थेन। तो हम मन ही मन पहले सोचना चाहिए कि भगवान से हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है, गुरु से बहुत प्राप्त किया है, परंपरा से प्राप्त किया है। मैं सोच रहा था कि 500 साल के पहले हमारे चैतन्य महाप्रभु और गोस्वामी इत्यादि लोग कैसे उनकी दिनचर्या रहती थी, कैसे लोग शांति से भक्ति कर पाते थे पता नहीं, क्योंकि मुसलमानों का जमाना था, है ना, उस समय हमने सुना वृंदावन में कैसे बहुत बड़ा मंदिर था, राधा गोविंद मंदिर, उसको तोड़ दिया औरंगजेब ने, और ऐसे आपने सुना है कोल भंग हुआ किधर, शिवा सांगन में, नवाब हुसैन शाह आकर कोल भंग किया उसने, तो अगर कोल बजाते हैं तो उसको भंग करते हैं, उसको फाड़ते हैं, तोड़ देते हैं, करताल को गंगा में फेंक देते थे, वैष्णवों को पिटाई करे किया जाता था उस जमाने में, और कोई जोर से नाम नहीं ले सकता था उस समय, चुपके चुपके भक्ति करना पड़ता था उनको, और एक स्थान से दूसरा स्थान अगर सफर करना हो तो टोल नाका में बहुत कुछ तकलीफ होता था वैष्णवों को यात्रा करने के लिए भी, तो मंदिरों में मूर्तियों को छुपाना पड़ता था नहीं तो तोड़ते थे। तो हम लोग उस जमाने को पार कर दिया है, अभी मुसलमान निकल गए, उसके बाद ब्रिटिश भी लोग आकर चले गए हैं, और हमारे जमाने में भक्ति करने के लिए बहुत स्वतंत्रता है, सिर्फ भक्ति करने के लिए लगन की जरूरत है, नहीं तो फ्रीडम स्वतंत्रता बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन उस जमाने में बहुत भक्ति प्रचुर मात्रा में लोग करते थे। तो हाँ, वो लोग उस परिस्थिति में परिस्थिति को झेलते हुए हमको बहुत अच्छे अच्छे किताबें दिया है, दिव्य ज्ञान प्रदान किया है। जो हम लोगों ने प्राप्त किया है उसके लिए हमें उस ऋण को चुकाने के लिए चुकाने के बारे में सोचना चाहिए हमको। तो हम कैसे चुका पाएंगे, क्या करना चाहिए हमको? कुछ लोग सोचते हैं डोनेशन ले लीजिए, क्योंकि एक पिताजी आए थे अपने बेटे के साथ, बोला कि मेरा बेटा ब्रह्मचारी बनना चाहता है आश्रम में, लेकिन हम अच्छे खानदान में जन्मे हैं, हम किसी के हाथ से खाते नहीं, आप बोल दीजिए महीने में कितना खर्चा करते हैं, हमें दे दूंगा, उनको भर दूंगा। मैंने बोला नहीं, ब्रह्मचारी के लिए फ्री प्रसाद। बोला नहीं नहीं, हमको फ्री कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों ने देखा कुछ लोग हैं ऐसे मिला है अपने भारत में, कुछ लोग अपने मान सम्मान की बात वो लोग सोचते हैं कि हम कुछ नहीं खाते मुफ्त में, कुछ नहीं लेते मुफ्त में, वो बोलते हैं कि हम पैसा भरेंगे उसके लिए। तो उसका मतलब उनके अंदर भी ये भावना है कि हम किसी से कुछ मुफ्त में नहीं लेना चाहिए। तो हम परंपरा से बहुत कुछ चीज हम मुफ्त में प्राप्त किया है। जैसे इस्कॉन मंदिर में हम जाते हैं, प्रसाद का बड़ा प्लेट दिया जाता है, कुछ पैसा नहीं है उसके लिए है। इसी तरह अनेक बार किताब देते हैं, अमेरिका में देखा मैंने, किताब रख देते हैं, जो भी चाहिए ले सकते हैं किताब है, और जो डोनेशन डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। अमेरिका में यह सिस्टम है, भारत में यह सिस्टम करेंगे तो बोंडी हो जाएंगे कोई कुछ नहीं डालेगा, लेकर उठा कर लेके जाएगा है ना तो हम अगर कुछ हम लेते हैं तो देना भी है हमको, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। हमें सोचना चाहिए कि क्या हम दे सकते हैं। तो हिज ग्रेस वैशिष्ठ प्रभु जब पुणे में आए थे, दो महत्वपूर्ण चीज उन्होंने बोला जो मुझे बहुत हृदय स्पर्शी रहा, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। मैंने सैकड़ों लोगों को इसके बारे में बोल दिया, मैंने इसको सुनने के बाद इतने बढ़िया चीज उन्होंने बताया। वो बोले कि देखो, वैदिक संस्कृति में 5 वयस में एक लड़का शामिल होकर गुरुकुल में शामिल होकर वो गुरु की सेवा करता है, आचरण दासवन नीचो गुरव सुदृढ़ सौहृदः। तो गुरुकुल में जाते समय उसका ड्यूटी क्या है, कर्तव्य क्या है? समित्पणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसे बताया गया है शास्त्रों में। तो समित लाना चाहिए गुरु की सेवा के लिए, जंगल में जाकर समित इकट्ठा करके, समित का मतलब है जो लकड़ी होता है ना, जो अग्नि की में आहुति दिया जाता है, वो लेकर आते थे। उसके बाद गुरु, जैसे आप जानते हो कृष्णा और सुदामा है ना, दोनों समित इकट्ठा करके लेके आ रहे थे ऐसे ऐसे ही। तो वैशिष्ठ प्रभु ने बोला कि वैदिक संस्कृति में वो लोग समित के लकड़ी को हाथ में पकड़ कर लेके जाते थे, लेकिन हम लोग कलयुग में क्या करना चाहिए, किताबों को पकड़ कर लेके जाना चाहिए हाथ में। और वो बोले कि किताब और लकड़ी में फर्क नहीं, क्योंकि लकड़ी से ही कागज बनता है और कागज में ही किताब छापा जाता है। तो प्रभु जी ने बताया कि जो किताब लेकर जाते हैं वो गुरु के लिए समिति ही लेके आ रहे हैं, ऐसे बोला उन्होंने। तो ये बहुत बढ़िया लगा हमको। तो अभी किताब उठाते समय मुझे याद आता, अभी हम लकड़ी पकड़ के लेके जा रहे हैं गुरु जी की सेवा के लिए। दूसरा चीज उन्होंने बोला कि जब ये समित को अग्नि कुंड में डाला जाता है, देखिए यज्ञ कुंड जो है वो विष्णु का मुख है, और यज्ञ कुंड में उगने वाला जो आग है वो विष्णु के मुख का जिह्वा है, उस विष्णु के जिह्वा में आहुति दिया जाता है, घी का आहुति दिया जाता है। तो उस जमाने में वो लोग गोमेद यज्ञ करते थे, नहीं तो अश्वमेध यज्ञ करते थे, जिसमें एक जानवर को आहुति में डाला जाता था, उसके बाद उस जानवर को क्या मिलता था, एक मनुष्य शरीर मिल जाता था उसको। तो प्रभु जी बता रहे थे कि जब हम लोग किताब वितरण करते हैं, उस किताब वितरण से क्या होता है, वो बोले कि हम लोग एक जीव के हृदय में, हम एक जीव के चित्त में एक आग के चिंगारी को हम लगा रहे हैं किताब देकर। उससे क्या होता है, चिंगारी से ऐसे आग बढ़ता है ना ऐसे है। तो प्रभु जी बता रहे थे कि वो चिंगारी लगाने से क्या होता है, उस आग में उसके अंदर जानवरी प्रवृत्तियां जो हैं उसको चढ़ा देते हैं हम लोग, और किताब पढ़कर उसके अंदर जो मनुष्य है नहीं तो दैवी प्रवृत्ति है वो जग जाता है। दैट मीन्स यू आर किलिंग द एनिमल इंस्टिंक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल बाई गिविंग एम अ बुक, एंड यू आर अवेकनिंग द डिवाइन इंस्टिंक्ट्स। इन द इंडिविजुअल, ये उसके ही बराबर है जब गोमेधयज्ञ में अश्वमेधयज्ञ में घोड़े को नहीं तो गाय को अग्नि में डालते थे और बाहर निकलता था मनुष्य के रूप में, ऐसे ही। तो ये दोनों चीज हमको बहुत अच्छा लगा जो वैशेषिक प्रभु ने बोला कि अगर जनता जो भाग दौड़ कर रहा है इस दुनिया में उनको अगर तुम जगाना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, किताब देकर ये भक्ति की चिंगारी को पैदा करो उनके हृदय में, उसके द्वारा वो जानवरी प्रवृत्तियों को मिटा दोगे। और ये सत्य बात है, हम लोगों ने देखा है कैसे एक इंसान भक्ति की शुरुआत में रहता है और भक्ति प्राप्त होने के बाद कैसे परिवर्तन आ जाता है, एकदम 360 डिग्री बदल जाता है एक व्यक्ति। एक बार पुनःहत्रा में एक छोटे भक्त आए थे, उनका नाम था वक्रेश्वर पंडित प्रभु थे, वो छोटा लेकिन शक्ति बहुत था उनके अंदर, अच्छा गाते थे, नीताय गौर बुम 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 ऐसे बजाते थे, बड़ा करताल हाथ में, इतना बड़ा करताल लेकर बजाते थे ऐसे, तो सबको नचाया नचाया दिन भर पुनःयात्रा में। तो वो बोले, प्रभु जी मेरे घर में 6 भाई हैं हम लोग, मैं सबसे लास्ट भाई था मेरे घर में। मेरे माँ ने बोला, अरे तुम कितने बिगड़े हुए थे, तुम शराब पीते थे, नशा लेते थे, लूटते थे लोगों को, इतना बदमाश हो चुका था तुम, मैंने सोचा तुम गया गुजरा हो, तभी सुधरने वाले नहीं हो हा? लेकिन अभी तुम इस्कॉन में ज्वाइन करके तिलक पहनकर शिखा रखकर कीर्तन करना, नाचना, भगवान की भक्ति करना, इसको देखकर मुझे इतना आश्चर्य हो रहा है। उनके माँ ने बोला, ये संस्था साधारण संस्था नहीं है, ऐसे बिगड़ा हुआ व्यक्ति को भी इतना परिवर्तन ला सकता है, ऐसे बोले वो। तो इस तरह हम लोग जो किताब धरने के लिए जाते हैं, हम लोगों में दैवी प्रवृत्ति को हम जगा रहे हैं, साथ साथ गुरु की भी सेवा कर रहे हैं। किताब को उठाकर श्रीमान वैशेषिक प्रभु बोलते थे कि तुम किताब को उठा लो हाथ में, टेक द बुक्स इन योर हैंड एंड हिट द स्ट्रीट एंड कम बैक, ऐसे बोला उन्होंने। तो हमारे एक ब्रह्मचारी ने पूछा उनको, प्रभु जी किताब ले लिया हाथ में, स्ट्रीट तक चले गए, आप बोल रहे हो वापस लौटा, वो बेचना नहीं है क्या? तो प्रभु जी बोले, बेचना नहीं है, तुम जाओ वापस लौटा जाओ। तो वो बोला कि लेकिन प्रभुपाद ने बोला किताब वितरण करो, वो बोले नहीं नहीं, तुम किताब लेकर जाओगे तो कोई तुमसे ले ही लेंगे तुमसे लेकिन हमारे अंदर वो हाथ में किताब लेकर बाहर निकलने के लिए उतना शक्ति नहीं है, क्या बोलते हैं वो, मोटिवेशन नहीं है, एक तरह का अर्ज नहीं है, एक ऊती उसको बोलते हैं, अर्ज नहीं है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि द मोर यू शो द मोर यू सेल, जितना आप लोगों को दिखाओगे उतना किताब जाएगा। एक दिन की बात है, मैं मेरे पास कभी कभी देखा कि किताब पूरा खत्म हो जाता है, ये बैग खाली हो जाता है, इसलिए उस दिन मैंने खास करके 25 भगवद गीता लिया था, एकदम मोटे मोटे भगवद गीता इंग्लिश में लेकर गया। लेकिन 2 घंटे स्टेशन में घूमने के बाद भी खोई नहीं ले रहे थे, एक भी नहीं गया, ट्रेन के अंदर गया, ट्रेन के खिड़की से दिखाया, बहुत तरह क्या, एक प्लेटफॉर्म से दूसरा प्लेटफॉर्म गया, क्योंकि उसके पहले दिन मैंने बहुत कुछ वितरण करके थोड़ा गर्व चढ़ गया था, तो अगले दिन भगवान ने हमको गर्व को उतार दिया। तो 25 किताब ऐसे ही पढ़ा रहा, तो मुझे रोना आ रहा था, मुझे क्या हो गया, इतना किताब लाया एक भी नहीं गया आज। तो एक लड़का एकदम तेजस्वी बैठा था, उसके निकट 4-5 विद्या उसके साथ मित्र बैठे थे, सीधा मैं उसके पास पहुंच गया, मैंने देख लिया कि ये लीडर है इसका ग्रुप का, और जाकर उसको दिखाया किताब, देखा ऐसे मुड़कर देखा उसने, मैंने बोला देखो दिस इज, मैंने उसको पूछा तुम्हारा नाम क्या, बोला अर्जुन, बोला ये भी अर्जुन का ही कथा है। तो मैंने गीता के बारे में बोला कि इस तरह अर्जुन भी बड़ा लीडर है, लेकिन हतोत्साहित हो गया था वो, लेकिन गीता सुनकर उसके अंदर शक्ति प्राप्त करके वो विजय प्राप्त किया, ऐसा बोला मैंने, तुरंत उसने ले लिया और पैसा भरा और अपने मित्रों को बोला ए आप एक एक ले लो, बोला सब लोग ले लिया ऐसे, तो एक दर्जन गया उधर ही। तो आप देखेंगे 2 घंटे में जो हम वितरण नहीं कर पा रहे हैं वो 1 मिनट में जा सकता है, क्योंकि सबके हृदय में अंतर्यामी के रूप में परमात्मा है, भगवान है। महाराज आ गए, महाराज जा रहे हैं अभी, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, श्रीला प्रभुपाद की।
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे
हरे कृष्णा यस महाराज सब लोग बैठे परम पूज्य गोपालकृष्ण गोस्वामी महाराज की महाराज अभी तक मैं बता रहा था ऋषि ऋण के बारे में बता रहा था ऋषि ऋण मैं बता रहा था कि कैसे हम लोगों ने गुरु परंपरा में दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है और सबका सबके ऊपर ऋण है और गुरु और वैष्णव और गुरु परंपरा की ऋण को चुकाना चाहिए वही बात हम चर्चा कर रहे थे अभी। तो परम पूज्य गोपालकृष्ण महाराज आप लोग जानते हो कि जनवरी में आते हैं महाराज जी जनवरी में आकर सबको प्राइजेस वितरण करते हैं लेकिन इस बार महाराज ने बोला कि इनका 75वां साल हम लोगों ने मनाया दिल्ली में 75th एनिवर्सरी ऑफ महाराज वाज सेलिब्रेटेड इन अ वेरी बिग वे वेरी ब्यूटिफुल वे मैं भी था उधर। तो इसलिए महाराज की इच्छा है कि इस साल सब जिस मंदिर में भी महाराज जीवी सी हैं उस मंदिर के भक्तों को बहुत प्रचुर मात्रा में प्रपद के ग्रंथों का वितरण करें। इस ये बात को सोचकर महाराज जी इस बार मैराथन के पहले आ गए हैं पुणे में। तो हम लोगों ने सोचा कि पुणे के सब काउंसलर्स लोग जो आप लोग इधर बैठे हो हर एक काउंसलर 40 50 80 100 तक भी कुछ लोगों के पास वैष्णव जुड़े हैं आपके ग्रुप में। तो महाराज ने सोचा कि आप लोगों के पास विनती करने से और आपके द्वारा आपके अंडर में जो भी काउंसिलर्स हैं उनको प्रेरणा मिल सकता है ये सोचकर महाराज ने ये खास मीटिंग आप लोगों के लिए आयोजित की है। तो महाराज के गला थोड़ा बैठ गया है महाराज ने कल से भी बोला मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा लेकिन फिर भी महाराज सोचते हैं कि कुछ संदेश देना चाहते हैं आपको आइए हमारे से सुनते हैं। हरे कृष्णा
जैसे आप जानते हो प्रोग्राम है 7:30 बजे तो वहां लेक्चर देंगे। मुझे सर्वलक्षण ने बोला कि अगर आप चाहते हो कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन बड़े पूना में तो काउंसलर्स को प्रेरणा देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पूना में जो काउंसलर कहते हैं उसके अनुसार सब चलते हैं। ये सच बात है हाँ कन्फर्म है। तो मुझे यहाँ के भक्तों ने कहा आप भक्तों को मिलने के लिए तो मैं बहुत खुश हूँ आप काउंसलर्स को मिलकर। एक समय काउंसलर की काफ़ी जिम्मेदारी रहती है। कल हमने एक श्लोक पर बोला था सनातन गोस्वामी ने जब हरिदास ठाकुर को मिले उन्होंने कहा कईयों का आचार है वो प्रचार नहीं करते कई लोग प्रचार करते हैं और क्या नहीं है आचार पर आप में दोनों ही गुण हैं आचार भी और प्रचार भी। तो आप जो काउंसलर्स हो आपको एग्जाम्पल बनना पड़ता है और मेरे ख्याल से तो आप सब जानते हो ग्रंथों के वितरण का कारण ये हमारे अच्छाइयों की इच्छा थी कि हमें ज्ञान को बढ़ाएं, क्योंकि परम भगवान अत्यंत दुखी होते हैं ये देखकर कि हम भज्जी उनकी शिक्षा से दूर जा रहे हैं। तो मैं तो केवल छोटा सा प्रोग्राम कर रहा हूँ जिसमें हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप सब प्रयास करो बुक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए। और मेरे ख्याल से अगर हम प्रश्न उत्तर करें वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग कोई प्रश्न पूछ सकते हो, उत्तर दे सकते हैं, पर उद्देश्य ये है बुक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना। आप में कितने काउंसलर हो जो हर साल बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हो? तो लगभग आधे काउंसलर खुद भी नहीं जाते। तो आप लोग भी उनके साथ जाओ। और कितने काउंसलर हैं जिनके अंदर जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिनके अंदर जो काउंसलर्स हैं, वो जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में? मेरे ख्याल से अगर आप सब काउंसलर ये निर्णय लो कि हम भी जाएंगे और उदाहरण से लोगों की प्रेरणा बढ़ाएंगे, अच्छा रहेगा। सो मे बी वी कैन डू क्वेश्चन आंसर।
एनी ऑफ यू वांट टू आस्क क्वेश्चंस टू महाराज?
बुक डिस्ट्रीब्यूशन,
एनीबडी प्लीज रेज द हैंड, माइक विल कम टू यू।
नो क्वेश्चंस?
हाँ यार,
बट यू आर नॉट अ काउंसलर। ओके,
हरे कृष्ण महाराज। महाराज समटाइम कभी कभी ये सुनाया जाता है कि 50 करोड़ भगवत गीता गए, इतना पुस्तक गए, लेकिन इतना उसका इफेक्ट कितना हुआ उसके ऊपर काफी लोग चर्चा करते हैं। महाराज इसके बारे में हाउ टू टेक इट?
कई बार हम सोचते हैं अगर मैराथन में 3 लाख भक्त बांटेंगे तो अगले महीने 3 लाख नए भक्त आ जाने चाहिए। हमारा कैलकुलेशन वैसे रहता है। पर तो अगर 50 करोड़ किताबें बांटी हैं तो 50 करोड़ भक्त भी होने चाहिए। ये आवश्यक नहीं कि हर गीता जो पढ़ेगा उसका उसके अनुसार पूरा शरणागत हो जाएगा। पर ये जरूर है अगर हम प्रचार करते जाएंगे तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा। जैसे एक समय था पुणे में लगभग कोई डिवोटी नहीं था। मैं प्रभुपाद जी के साथ आया था पुणे और महाबलेश्वर, उन दिन में इसका तो एक भक्त भी नहीं था यहाँ। तो बॉम्बे से भक्त भेजे थे जूह से। तो ऐसे ऐसे प्रचार बढ़ते गया और ऐसे ऐसे भक्तों की संख्या भी बढ़ते गई। तो एग्जैक्टली किस प्रपोर्शन में डिवोटी बनते हैं वो स्पेशल स्टडी करना पड़ेगा। तो ये देखा है कि हर जगह जहाँ प्रचार हो भक्तों की संख्या भी बढ़ती है। उसी प्रकार दिल्ली में जब प्रभुपाद पृथ्वी पर अप्रकट हुए 1977 को 2 या 3 डिवोटी थे बस, आज हजारों हैं। सो ये नहीं कि अगर हम मैराथन में जाएंगे तो 100 गीता बांटेंगे तो 100 भक्त बनेंगे, पर इनका प्रभाव पड़ता है। और इसी क्या कारण है कि इसका के भक्तों की संख्या बढ़ रही है आजकल के हिंदुस्तान में? क्योंकि इन ग्रंथों के प्रभाव के कारण। और तो हमें और हमें इस भाव से चलना चाहिए कि भगवान की इच्छा है, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, हमारे आचार्यों की इच्छा है। तो हमें प्रयास करना चाहिए इसे सफल बनाने का। और एक नहीं अनेक श्लोक हैं जहाँ की कहा जाता है सबसे उत्तम सेवा क्या है, प्रचार की सेवा। और हमारे सामने प्रभुपाद जी का उदाहरण है। जब प्रभुपाद जी दिल्ली में थे और वृंदावन में अपने भगवतम को छाप रहे थे तो खुद जाते थे प्रचार करने के लिए। अंदाजा लगाओ लगभग 70 साल की आयु 68 years खुद आना मथुरा से दिल्ली, वो भी 3rd class डब्बे में। और प्रभुपाद जी की दया से इसको भी इतनी सुविधा आ गई है, अगर दिल्ली से वृंदावन जाना हो अभी सब टैक्सी में जाते हैं, प्राइवेट मोटर में। और उन दिन में प्रभुपाद खुद आते थे 4th class डब्बे में और टांगे में। फिर प्रभुपाद दिल्ली पहुँच कर छिबीवाड़ा में जाते थे। छिबीवाड़ा में एक बहुत खूबसूरत राधा कृष्ण मंदिर है जहाँ जिसके ट्रस्टी थे एक मित्र शर्मा। तो प्रभुपाद बार बार दिल्ली आ रहे थे और प्रभुपाद जी के पास कोई रहने का ठिकाना नहीं था। तो ये शर्मा ने बोला, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं आपको एक कमरा देता हूँ। उन्होंने एक कमरा दिया प्रभुपाद जी को और उसके कमरे में प्रभुपाद जी ने अपना दिल्ली का ऑफिस बनाया था। और प्रभुपाद छिबीवाड़ा में उसके आसपास पेपर के डीलर हैं, प्रिंटर प्रेस एक राधा कृष्ण प्रेस थी। प्रभुपाद खुद अनुवाद, फिर अखबार खरीदना, कागज खरीदना, छापना, फिर बाइंडिंग कराना, फिर खुद जाकर बांटना। 1-man army। अब तो आपको सब पका पका बिल्कुल फिनिश प्रोडक्ट मिलता है। आपको कहना पड़े फिर तुम अनुवाद करो, फिर टाइपिंग करो, फिर छापो, आप कर पाओगे? नहीं। अभी तो आपको नीटली पैक्ड हाई क्वालिटी 1st class प्रिंटेड किताबें मिलती हैं। नहीं, कई साल पहले जब हमने मैराथन शुरू किया था BBT के पास इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी। तो मुझे याद है हम मैराथन करते थे 10 दिन के लिए और 10 दिन का स्टॉक था। फिर कई बार 3-4 दिन कुछ नहीं होता था क्योंकि BBT के पास बुक्स आउट ऑफ स्टॉक थे। अब सब ऑर्गेनाइज हो गई है और BBT जब छापती है 1-7, 6-7 लाख किताबें। तो हमारे सामने प्रभुपाद का उदाहरण है और भक्ति सिद्धांत जी का भी। भक्ति सिद्धांत जी ने इस सेवा को क्या बुलाया? बृहद मृदंग। और भक्ति सिद्धांत जी ने एक अपने मंदिर में प्रिंटिंग प्रेस को भगवान के राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने इंस्टॉल कर दिया, क्योंकि भक्ति सिद्धांत जी के ये दिखाना चाह रहे थे प्रिंटिंग प्रेस में भगवान का सिद्धांत छपेगा। तो हमारे सामने मानाचार्यों का उदाहरण है। उदाहरण क्वेश्चन।
हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। जिस पुस्तक वितरण जैसे पहले होता था और अभी जैसे जैसे समय बदलने के बाद ना, तो उसका रूप प्रतिरूप में भी बदल, विकृत में भी बदल जाता है। कैसे? जिस प्रकार से शादी ब्याह में लोग पहले गिफ्ट देते थे, वही गिफ्ट डाउरी बन जाता है, दहेज। जो तो पुस्तक वितरण में क्या होता है, आध्यात्मिक जीवन में सब कोई प्रयास कर सकता है, हर व्यक्ति से मिलता है, पुस्तक देता है, एक उत्सव जैसे लगता था पहले, लेकिन अभी एक कंपटीशन आ जाता है, स्पर्धा। और स्पर्धा ही नहीं, जिसके पास पैसा है, जो पैसा ज्यादा कलेक्ट करके वो दूसरों को फिर बाद में रख के पुस्तक ले सकता है, बाद में फ्री देते हैं, या तो 50%, 60%। तो जो ये मैराथन का उत्साह है और जो सबको भाग लेना चाहिए, तो कुछ लोग लेते, कुछ लोग नहीं ले पाते, कुछ लोग सोचते हैं जाते ही नहीं है, आर्म चेयर टेबल से ही पुस्तक वितरण हो जाता है कॉन्टेक्ट के कारण से। और कुछ लोग दौड़ दौड़ जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, पर्सन टू पर्सन जाते हैं। तो जो ज्यादा पुस्तक वितरण टेबल से करता है उसका ज्यादा महत्व दिया जाता है, जो व्यक्ति से मिलता है उसका नहीं दिया जाता। तो फिर ऐसे दोनों स्थिति में उत्साह को कैसे बना के रखना चाहिए और एक उत्सव जैसे लगना चाहिए, फेस्टिवल जैसे।
कंपटीशन भक्तों के बीच में,
यस महाराज,
मंदिरों के बीच में,
भक्तों के बीच में, मंदिरों के बीच में, सबके बीच।
ये जो कंपटीशन है, प्रभुपाद जी कहते थे दिस इज ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन, वहाँ भाव होना चाहिए हम भगवान की तरफ सेवा बढ़ा रहे हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए मैं 10 लाख गीता बांटूंगा मुझे इनाम मिलेगा, ये लोग कहेंगे देखो मैं कितना श्रद्धालु भक्त हूँ। हमें प्रयास करना चाहिए, और दिन ब दिन भक्त जो हैं नया साधन खोजते रहते हैं, जैसे कि अमेरिका में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे शुरू हुआ। एक दिन एक भक्त केशवदास वापस लौट रहा था बर्कली के मंदिर में सैन फ्रांसिस्को, रास्ते में उन्होंने पेट्रोल डालना था, तो गाड़ी में पेट्रोल डालकर उस कुछ दिन पहले एक कृष्ण लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण विष्णु कृष्ण बुक जापान से छप कर आई थी, तो वो उनकी मोटर में थे, तो उन्होंने $10 का पेट्रोल खरीदा। उन्होंने पेट्रोल पंप के मालिकों का इंस्टेड ऑफ $10 कैन यू टेक दिस बुक, और उस मालिक ने देखा किताब अच्छी लगी, ओके आई विल बाय दिस बुक। तो भक्तों ने देखा $10 देने की हो जाए किताब लेकर वो खुश हो गया। तो भक्तों ने ये उदाहरण लेकर और एक एक्सपेरिमेंट किया। इंडिया में भी जब मैराथन शुरू हुआ, इंडिया में बुक डिस्ट्रीब्यूशन अमेरिका के बाद हुआ, और जब हिंदुस्तान में भी शुरू किया जब भक्त लोग बुक टेबल लगाते थे, गीता ज्ञान या स्पॉन्सरशिप का कोई आइडिया नहीं था, तो आस्ते आस्ते बुक टेबल के बाद ट्रैवलिंग बसेस आई, ट्रैवलिंग बसेस के बाद हम लोग ने फैक्ट्री में जाना शुरू किया। फैक्ट्री में जाते थे और मालिक को कहते हैं आप ही कारखाने 500 आदमी काम करते हैं, सबको एक एक गीता दो। और कई जगह ऐसी स्कीम्स हमने लगाई कि हम आधा देंगे वो आधा देंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशन। और फिर ये आया कि लोगों को हम कहने लगे अगर आप खुद बुक किताबों में नहीं बांट सकते आप स्पॉन्सर कर दो, तो कई लोग स्पॉन्सर कर देते, हमारे पास बांटने का समय नहीं है तुम 10,000 गीता हमारी तरफ से बांट दो। तो आपका प्रश्न क्या था कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्पिरिट तो रहना चाहिए, सिर्फ एक नया साधन है कि आप बुक्स को स्पॉन्सर करा सकते हो, और फिर ये स्पॉन्सर किताबों को आप लाइब्रेरी में दे सकते हो। मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करता कि स्पॉन्सर करा के हम गीता फ्री बांटें, फ्री बांटने में लोगों को गलत संदेश जाता है, और किसी चीज़ को फ्री बांटोगे तो लोग उसकी इतनी कदर नहीं करते। तो मेरा तो ये सिद्धांत है कि अगर कोई स्पॉन्सरशिप कर रहा है तो हम वो किताबें कोई लाइब्रेरी या वैसे स्थान पर बांटें, पर कई भाग जैसे दिल्ली में वो लोग बांटते हैं, स्पॉन्सर कराते हैं, फिर माघ मेला में जाकर गीता सस्ते भाव में बेचते हैं। तो आपका ये कहना है कंपटीशन आ जाता है, हाँ तो प्रभुपाद जी कहते थे दिस इज कॉम्पिटिशन फॉर कृष्ण, ये भाव होना चाहिए, हम अधिक से अधिक मात्रा में भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं. ओके यस.
हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम. तो महाराज जी, जो अभी जो मैराथन जो चलता है महाराज जी, तो वो मैराथन में जो टाइम पीरियड दिया जाता है कि बुक वितरण करने के बाद जो लक्ष्मी जमा करना है, तो बहुत कम टाइम पीरियड होता है महाराज जी.
तो
हाँ, डेढ़ महीना या महीने के अंदर ही उसको सेटलमेंट करना पड़ता है. तो मेरा अनुवाद ऐसा है महाराज जी, वो कम से कम ढाई महीना या दो महीना का अगर टाइम पीरियड दिया, तो तीन महीना तक टाइम पीरियड दिया तो बहुत उत्साह भी रहेगा और वितरण करने वाले को भी बहुत उसका मतलब.
आपका कहने का मतलब है, आप जब गीता बांटते हो लोगों को क्रेडिट ज्यादा देना चाहिए.
हाँ, कम से कम एक तीन महीने का तो होना चाहिए महाराज जी एडवांस में.
अभी कितना कितना
डेढ़ महीना वगैरह, डेढ़ महीना
कितना समय देते हो अभी?
डेढ़ दो महीना देते महाराज जी
अभी.
हाँ, और बाद में क्या होता है महाराज जी, फिर जो जिनको हम लोग वितरण करते बुक,
हमें बोलने वाला था कि बीबीटी ने आगे पेमेंट दिए देना होता है. बीबीटी जब बुक छापती है, पेपर तो कैश देकर हम खरीदते हैं, पर जो छपाई की कीमत है वगैरह वो क्रेडिट लेते हैं मैराथन की समाप्ति तक. ठीक है, पर हम ट्राई कर सकते हैं. आई स्पीक टू बीबीटी. ठीक है, तो मान लो हम 15 दिन बढ़ा दें, वो ठीक रहेगा
महाराज. इस बार हम भक्तों को विनती कर रहे थे कि आप 123 भगवद गीता पर हेड वितरण करने के लिए प्रयत्न कीजिए. तो कुछ कांग्रेगेशन भक्त पूछते हैं कि हम कंपनी जाते हैं, सुबह रात को आते हैं, तो 123 गीता से इन वन मंथ हाउ विल बी डिस्ट्रीब्यूट. तो मेरा आपके लिए प्रश्न महाराज जी, दिल्ली में जो कांग्रेगेशन जो वोटी कंपनी जाते हैं, तो अपने अपने काम धंधे के लिए जाते हैं, सुबह जाते हैं रात को आते हैं, वो लोग कैसे टाइम निकाल पाते हैं किताब वितरण करने के लिए?
तो वहां में जो नौकरी या बिजनेस करते हैं वही प्रॉब्लम है जो यहाँ है. जो जॉब करते हैं, they have the same problem everywhere. They can't take off too much time. पर कई हैं जो छुट्टी ले लेते हैं एक हफ्ता मैराथन के लिए और मॉल्स वगैरह में जाते हैं और रोज शाम को ऑफिस के बाद जाते हैं. और मेरे ख्याल से 4,000 कॉन्ग्रीगेशन के बाद हर साल मैराथन करते हैं. भाई कैसे करते हैं वो मुझे नहीं पता, कौन क्या बहाना देता है, कुछ ना कुछ तो कहते होंगे. बट दिस इज देयर लिमिटेशन. ओके
महाराज, कुछ कुछ भक्त लोगों को थोड़ा डर होता है कि हमने इस तरह का कुछ बिक्री नहीं किया है पहले, इसलिए कुछ लोग थोड़ा फोर्स करेंगे तो वो खुद ही खरीद लेते हैं, घर में रखते हैं. और कुछ शादी वादी होता है तो उस समय दे देते हैं किसी को फ्री में, लेकिन बिक्री करने के लिए उनको लगता है कि इस तरह का बिक्री करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल चलता है.
कईयों को कई भक्त सोचते हैं, हमने तो कभी ऐसी सेवा की नहीं, आई एम इंट्रोवर्ट, मुझे और प्रयास करने से भगवान शक्ति दे रहे. कई भक्त पहले तो किसी का अभ्यास नहीं था, जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए उन्होंने अपने शिष्यों को कहा प्लीज डिस्ट्रीब्यूट बुक्स. तो जो अमेरिकन शिष्य थे वो बहुत चिंता में पड़ गए. स्वामी जी रोज कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, और कभी किसी ने इतिहास में ऐसा बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया नहीं था जो इसको उनके भक्तों ने शुरू किया, सड़क में जाकर गीता बांटना. दे हैड नो एक्सपीरियंस, उनका यही मेडिटेशन था. Prabhupada is saying distribute books. तो प्रयास करते गए और एक स्टेप से दूसरे स्टेप नया विचार भी आता गया। और हिंदुस्तान में भी जैसे मैंने कहा, पहले तो उसे बुक टेबल्स लगाते थे, और बुक टेबल से गीता ज्ञान, गीता ध्यान, ये सारे प्रोग्राम शुरू किए। स्पॉन्सरशिप फॉर होटल्स, स्पॉन्सरशिप फॉर हॉस्पिटल्स। तो भक्त सोचते जाते हैं, असल में जो लोग, जो भक्त स्पॉन्सरशिप कराते हैं, उनको हर साल नए लोगों के पास जाना चाहिए। अगर हम हर साल एक ही स्थान पर पहुंच जाएंगे तो दूसरा व्यक्ति शायद आपका सहयोग नहीं रहे। If you go back to the same congregation, is that right? I want a question from the Grihastha counselors. We'll take two or three more questions and then we can stop.
Hare Krishna Maharaj, dandavat pranam. महाराज, प्रश्न ये था कि कोई अगर नए डिवोटी जुड़ रहे हैं जो ऑलमोस्ट एक डेढ़ साल उनको हुआ है, तो उनमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन का टेस्ट अगर क्रिएट करना है, उनको इंस्पायर करना है, तो हमें उनको कैसे इंस्पायर करना चाहिए? दे आर जस्ट वन एंड हाफ ईयर ओल्ड और समथिंग।
हमारे बुक मैराथॉन्स में बहुत से गृहस्थ जुड़ते हैं तो बिल्कुल नए हैं, एक साल वो देखते हैं कि सारे भक्त लगे हैं, उनकी भी इच्छा रहती है कि हम इसमें जुड़े, पर हम जबरदस्ती किसी से नहीं कराते। अगर नहीं जाना चाहे तो ये नहीं कहेंगे तुम बिल्कुल माया में हो। हम अच्छे उदाहरण से प्रेरणा दे सकते हैं। शुरू शुरू में नए भक्तों की थोड़ी हिचक होती है, पर वो प्रयास करें भगवान शक्ति दे दें। अमेरिका में काफ़ी बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पहले से ज़्यादा, पर ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? मंदिर में इतने ब्रह्मचारी नहीं हैं। हमारे जो गृहस्थ भक्त हैं वो जाते हैं वीकेंड में, क्योंकि अमेरिका जैसे देश में लोग सिर्फ 5 दिन हफ्ते में काम करते हैं। तो जैसे सैन होजे का मंदिर है, सैन होजे का मंदिर है हमारा इस्कॉन का सिलिकॉन वैली में, वहाँ माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सब कंपनियों का ऑफिस है। और बहुत से भक्त, आधे से भी ज़्यादा जो सैन होजे में हैं, वो हैं या गूगल में या फेसबुक में, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब बड़े आईटी कंपनी में। तो ये भक्त हमसे 5 दिन काम करते हैं और शनिचरवार इतवार को जाते हैं। इस प्रोग्राम का नाम है वीकेंड वॉरियर। वीकेंड में युद्ध लड़ने जाते हैं माया से, और लोगों के घरों में जाते हैं। ऐसे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, सबकी बड़ी अच्छी तनख्वाह है, जब भी वो जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। तो आप प्रयास प्रचार कर सकते हो, हम जबरदस्ती किसी को नहीं भेजते।
दूसरा प्रश्न ये था, अगर हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हैं तो कीर्तन भी, अगर हम लोग हरिनाम भी कर रहे हैं, तो इट विल मोर इफेक्टिव अगर हरिनाम और बुक
डिस्ट्रीब्यूशन टुगेदर। वी हैव हर साल रशिया से वहाँ पर 20 भक्त आते हैं मैराथन करने, उनका अपनी टीम रहती है, दिल्ली में जाते हैं सब जगह, तो वो हरिनाम करते हैं और साथ में लोग बेचते हैं। आप पूछिए।
हरे कृष्ण महाराज। महाराज, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त हमें अच्छा स्पॉट ढूंढना बहुत जरूरी होता है, जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा किताबें जाए, तो ऐसे स्पॉट मिलना मुश्किल हो जाता है। जैसे लास्ट ईयर किया था, बट इस साल वो स्पॉट पर ज्यादा नहीं जा रहे किताब, तो ऐसा स्पॉट ढूंढना कितना आवश्यक है?
अच्छा प्रश्न है। एक समय था कि बॉम्बे में जीव मंदिर को लोकल ट्रेन बॉम्बे की उन स्टेशन में बांटने की इजाजत मिलती थी। कोई 20 साल हो गए, हर साल हमें मिलते थे और हमारे कोई 20-25 टेबल लगते थे अलग अलग स्टेशन में। फिर मुसलमानों ने शिकायत की, तुम गीता वालों को इजाजत दे रहे हो, हमें भी इजाजत दो। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। तो जब ये और ये बड़ा अच्छा स्पॉट था बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो फिर भक्तों को एडजस्ट करना पड़ा और दूसरे स्थान में करना पड़ा। तो हर स्पॉट ब्राइट स्पॉट बन जाता है, ये सब निर्भर है हमारे उत्साह के ऊपर। जब मैं एक प्रश्न और लूंगा और फिर समाप्त करेंगे इधर। ओके, हाँ
हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम। आप जो वीकेंड बुक डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे महाराज, उसमें वीकेंड के साथ अगर हम ऑफिस में जो लोग जा रहे हैं अगर वीक डेज में भी बुक वितरण करना चाहते हैं तो शाम में अगर करते हैं इवनिंग में या लेट हो जाता है तो उसमें थोड़ा मैराथन के टाइम में ही अगर करते हैं तो उसमें थोड़ा ये दिक्कत आती है कि सुबह फिर ऑफिस जाना होता है तो उठने में मतलब थोड़ा टाइम सोने का कम होता है या उठने में थोड़ा मतलब देर हो जाता है। सो इसको कैसे हैंडल करना चाहिए एक मैराथन के पीरियड को?
एक भक्त ने प्रभुपाद से पूछा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैराथन? मैराथन इज एसेंशियली एन इंग्लिश वर्ड। प्रभुपाद ने कहा मैराथन मीन्स लेस स्लीपिंग लेस ईटिंग। तो मैराथन के महीने जैसे कार्तिक के महीने में आप लोग तपस्या या भगवान के नामों का उच्चारण बढ़ाना चाहते हो, मैराथन के समय आवश्यकताओं को जरा घटा दो, पर जितना हो सकता है कीजिए। हम आपको ये नहीं कहते अगर आप इतना नहीं कर सकते, इतना आप कर सकते हो ईमानदारी से कीजिए। एक समय मैंने बॉम्बे में एक बुक स्टोर था, इंटरनेशनल बुक हाउस फ्लोरा फाउंटेन में, वो हमारे मेंबर थे उन दिनों में, और रीडर्स डाइजेस्ट टाइम लाइफ ये सब मैगजीन के वो इंडिया में एजेंट थे। तो मैंने उनसे कहा प्रभुपाद के बुक्स को डिस्प्ले करो, तो एक महीने के लिए विंडोज में प्रभुपाद जी ग्रंथों को डिस्प्ले किया था और बड़ा प्रमोशन। पर एक महीने के बाद देखा हमने कि इतनी ज़्यादा पुस्तकें नहीं बिकी जितना हमने सोचा था बिकेंगे। तो मैं प्रभुपाद जी के पास गया ये संदेश लेकर, तो प्रभुपाद ने कहा माई बुक्स आर सोल्ड बिकॉज ऑफ द एंथुसियाज्म ऑफ माय डिसाइपल। ये किताबें बिकती हैं क्योंकि भक्तों में उत्साह रहता है, उत्साह से प्रयास करते हैं तो सफलता मिलती है। और दुकानों में कोई उत्साहित नहीं होता। हम यह प्रचार के लिए जाएं, एक चीज साधना अच्छी रखो, मन मंत्रों का उच्चारण इत्यादि ठीक समय पर करो और उत्साह से प्रचार करो। एक अमेरिका में एक अमेरिकन डिपोटी था जिसे मैंने पूछा तुम भक्त कैसे बने, तो कह रहा था कि कोई 2 साल पहले वो फ्लोरिडा में था और उसके मित्र के मोटर में ही यात्रा कर रहा था। उसने देखा उसके मित्र के मोटर में पीछे एक भगवद गीता की कॉपी पड़ी है और उसने भगवद गीता का नाम कॉलेज में सुना था। उसने उस मित्र से कहा कैन आई बोरो दैट बुक भगवद गीता? और मित्र ने कहा व्हाई बोरो, टेक इट, आई हैव नो इंटरेस्ट। भक्त मित्र ने कहा मांग रहे क्यों, ले लो, इसमें कोई रुचि नहीं। उसने मित्र से पूछा इफ यू नॉट इंटरेस्टेड व्हाई डिड यू बाय इट? उसने उसके दोस्त ने कहा, एक हरे कृष्ण का इतना उत्साहित साधु मिला मुझे, उसने इतने प्रेम से चर्चा की कि मैं उनको नहीं नहीं बोल पाया कि इतना नहीं ले। और फिर वो गीता इस भक्त के हाथ में आई जो भक्त बन गया। अगर आप उत्साह से करोगे तो लोगों को प्रेरणा मिलोगे। एक समय एक भक्त ने प्रभुपाद से पूछा, हाउ कैन यू बी हम्बल एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, क्योंकि जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हो थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ता है ना, थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। तो प्रभुपाद ने कहा, बी अ लैम एट होम एंड अ लायन आउटसाइड। जब तुम प्रचार करने जाओ तो शेर जैसे रहो, और जब भक्तों से व्यवहार करते हो तो लैम मेम जैसे। ये नहीं घर में लैम बन जाओ और बाहर शेर, ये नहीं बाहर लैम बनो और घर में शेर बनो। भक्त के साथ नम्रता का व्यवहार रखो। ओके You asked already. Anyone who has not asked a question? Yes.
Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. Maharaj, how important it is to read Srila Prabhupada Lilamrit before going for the marathon?
Well, that's your decision. You may want to read the Prabhupada Lilamrita, you may want to read the Gita. Read anything that gives you strength to become more determined. That's your choice. We don't specifically say, read this book. But if you want, you can have a collection of Prabhupada letters and read one letter a day.
We have heard from many senior devotees that they do read Srila Prabhupada Lilamrit, especially the book distribution section for that.
Yes, yeah. You can have your choice. But there's no stating that this paragraph, nothing else. They can decide. Okay.
Hare Krishna Maharaj. I just wanted to inquire a small thing that during marathon we go to different areas in Pune. We do distribution. We put up tables on different streets and distribute books. So for last few years we've been doing that in a particular area called ABC Chowk. It is generally an area where there are many book stalls, and most of the students in Pune come to that area to purchase books because all educational books are available in that area. So when we put up stall there, so those bookkeepers, bookstall owners, they come and approach us and they tell us that we will take 1200 Bhagavad Gitas, we will take 1500 Bhagavad Gitas, but we want it at a very discounted rate because we will keep selling it throughout the year. So they offer us that we will take 1500 Bhagavad Gitas, but you give it for 90 rupees or 80 rupees, something like that. So in such cases, how good is it that we take sponsorship and we give it to them, because anyways, they're going to make business out of it throughout the year. So is that fair?
I follow your question. I personally, you may get different advice from different people, but personally, I see no problem if a bookstore wants a book at 80 rupees and somebody else's donation can subsidize it. You follow? If somebody wants, they're ready to sell the book for 80 rupees and the prices. These are individual questions that you can discuss with your temple authority. There's no fixed formula. It has to be like this. These are all negotiable. Adisha, I want to stop now. Take one more question. I have to go.
Anyway.
Hare Krishna. Okay, any more questions?
Yes, Maharaj.
Last question.
Yes, Maharaj. Maharaj, we see that this is the world of digitization and...
World of?
Digitization. We have all the books available in the digital copies as well. So my question is whether distributing a book in a hard copy and distributing a digitized copy, which is fairly easy nowadays and very scalable, so does it carry the same credit as far as the spiritual credit is concerned, rather than keeping the commercials aside?
As far as spiritual life is concerned, it's the same. But as far as counting of books is concerned, it's not the same. Because BBT, this is a big challenge for BBT now. Because in the electronic age, people just want the books. Well, you can, they get access to books. The only good thing is, you can't read on the computer for too long. You read too long on the computer, it's bad for the eyes, bad for your back. So ultimately, people have to get back to paper books. So that's a saving grace for us. But that is a challenge now, because many people you go, they will tell you, "Hum to electronic copy hamare paas." Okay.
हरे कृष्णा महाराज जी, जैसे हम जन्माष्टमी मनाते हैं, वैसे गीता का भी जन्म उत्सव है, तो इसको हमें पब्लिक में ज्यादा से ज्यादा कैसे मनाना चाहिए?
गीता जयंती ये साल कौन सा दिन है?
8
कहीं, जैसे हमारा पंजाबी बाग का मंदिर बहुत बड़ा यज्ञ करता है गीता जयंती को, और जिसमें कई 200-300 बड़े डोनर्स आते हैं। अलग अलग मंदिर अलग अलग स्कीम बना सकते हैं इसका लाभ उठाने को। सो आई विल स्टॉप एट दिस पॉइंट, आई विल गो टू दैट। तो आप सब काउंसलर जो हो, इस सभा में कितने काउंसलर हैं? ओके, सो आप सब प्रयास करोगे खुद जाकर ग्रंथों का वितरण करना, उससे अच्छी प्रेरणा होगी दूसरों के लिए। यू रेडी फॉर दैट?
हरे कृष्णा। और हम एक किरण, मिस्टर किरण जोशी, जो महाराष्ट्र स्टेट मराठी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, आज हमारे बीच में है, हम इनको स्वागत करते हैं। सामने कृपया महाराज जी के हाथ से ये हार स्वीकारिए, श्रीमान किरण जोशी। हरि बोल। और साथ साथ महाराज जी सब भक्तों को जो भी इधर आज इकट्ठित हुए हैं, महाराज जी आपको नरसिंह पवित्र देने वाले हैं।
हरे कृष्ण। सभी भक्त आ गए हैं महाराज के हाथ से नरसिंह पवित्र।
Hare Krishna।
Hare Krishna, one small announcement regarding Bhagavata Swagatam program. Last year, I had gone to some 265 homes to distribute Bhagavatam sets. Last year was 301. So this year I have taken a target of 350. So I seek blessings. So I seek the blessings of all devotees. But one of the ways I do, I am able to reach many homes is because all of you counselors, any counselor, if you are getting 4 sets of Bhagavatam orders, I will give you a score of 2, I will take 2. It's a collaboration. So you can use my name to inspire people to take the sets and I will come to their home and distribute Bhagavatam and both of us can share the score, okay? 50-50 score. And your contact point is Sutta Goswami Prabhu. His number is 922-585-3964. If you can't remember this number, you can check in Information Center, Vrindadeva Information Center.